इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरगोंडा बाबगोंडा पाटिल, श्री संदीप आदगोंडा पाटिल, सौभाग्यवती प्रियंका संदीप पाटिल, श्री प्रदीप आदगोंडा पाटिल, सौभाग्यवती सपना प्रदीप पाटिल, चिरंजीव संयम प्रदीप पाटिल एवं पाटिल परिवार हरिपुर।
विद्या सागर विश्व वंद्य भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थ सिद्धि प्रदं ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के बहुश्रुत भक्ति भावना की
जय बोलो। नियम सागर जी मुनि महाराज की जय बोलो। समस्त आचार्य संघ की जय।
आज की भावना का नाम है बहुश्रुत भक्ति भावना। संसारी प्राणी संसार में रहते हुए केवल दो ही ज्ञानों को धारण करने वाला होता है, जो सामान्य संसारी प्राणी हैं। छद्मस्त अवस्था में संसारी जीव के पास कम से कम दो ज्ञान तो होते ही हैं, मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान। एक और हो जाए तो अवधि ज्ञान हो सकता है, और एक हो जाए मनः परे ज्ञान भी हो सकता है। अब बचा कौन? केवल ज्ञान। वह केवल ज्ञान भी संसारी किसी जीव को हो जाए चार ज्ञानों के साथ, तो पांच ज्ञान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। यह निसर्ग नियम है। छद्मस्त अवस्था में अधिक से अधिक ज्ञान हो सकते हैं तो केवल चार हो सकते हैं, और कम से कम रहते ही हैं तो दो रहते हैं। आप सबके पास वर्तमान में दो ज्ञान हैं। समोशरण में बैठे हैं आप, पूजन कर रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति के बंद में कारणीभूत जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को भा रहे हैं। साथ साथ आपके पास में सम्यक्तो व्रत भी है। जिस संसारी प्राणी के पास सम्यक्तो व्रत हो और तीर्थंकर प्रकृति की भावना भा रहा हो, ऐसा गृहस्थ भी तीर्थंकर बनने के भाग्य को जुटा लेता है। इससे अधिक क्या चाहिए? तीन लोक का मालिक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। तीन लोक में जो सबसे सर्वोत्कृष्ट पूजनीय स्थान को प्राप्त करते हैं तो वो केवल तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर प्रकृति वह प्रकृति है जिस प्रकृति के उदय में चक्रवर्ती इंद्र सारे संसारी प्राणी शत इंद्रों से वंदित होते हैं। तीर्थंकर भगवान सौ सौ इंद्रों से वंदनी तीर्थंकर ही होते हैं, और कौन होते हैं? कोई भी महापुरुष सौ इंद्रों से वंदनी पूजनी नहीं होते। और इसका प्रभाव यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तात्या भैया अपने पास आए और महाराज मूर्ति के लिए कुछ करना है, कैसे करे? पचास पचास हजार के बोले या क्या? मैंने कहा मूर्ति तो मूर्ति है, मूर्ति देने वालों के भाव बहुत ऊंचे रहते हैं क्योंकि वो तीर्थंकर के सानिध्य में बैठकर वही भावना भा रहे हैं। जिसके सानिध्य में बैठकर के भावना भा रहे हैं उनको एक प्रतिमा देने में कोई विकल्प नहीं होगा। और विकल्प आड़े नहीं आया, देखते देखते 15 मिनट में एक एक लाख के सदस्य बन गए। कितने मूर्तियां हो गई? 46 मूर्तियां बन गई। देखो आप, इसी से पता चलता है तीर्थंकरों से कितने जुड़े हैं आप। तीर्थंकर भगवान अपने 40 मूल गुणों से ऐसा सबके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये आकर्षण है, यही आकर्षण यदि भव भव में साथ चले और सम्यक दर्शन उसके साथ सुरक्षित रहे, रहता ही है। क्योंकि जो तीर्थंकर से आकर्षित होता है उनके पास सम्यक दर्शन ना हो ये हो ही नहीं सकता। उत्कृष्ट मूल गुण के धारी अरहंत परमेष्टि 40 मूल गुण के जो धारी होते हैं उनको तीर्थंकर भगवान कहते हैं। जैन परंपरा में जो भी जहाँ भी मंदिर बनते हैं उन मंदिरों में केवल तीर्थंकर भगवंतों की ही प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। और किसी का करते हैं क्या? बहुत सारे भव्य आत्मा मुनि दीक्षा लेकर के त्याग तपस्या के माध्यम से घाती कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लेकिन उन अरहंत प्रतिमाओं की अरहंतों की प्रतिमा अपन क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? क्योंकि 40 मूल गुण उत्कृष्ट होते हैं। 40 मूल गुण उत्कृष्ट होते हैं और शरीर के जो लक्षण होते हैं 1008, ये 1008 सभी अरहंतों के शरीर की अपेक्षा से 1008 होते ही हैं ऐसा नहीं है। किसी किसी मुनि महाराज को जो अंतिम संस्थान है उस संस्थान से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन सा संस्थान? सनन नहीं, संस्थान, अंतिम संस्थान, कुब्जक संस्थान। संस्थान कोई भी हो सकता, हुंडक संस्थान, कुब्जक संस्थान, 6 प्रकार के संस्थान हैं। मोक्ष जाने के लिए और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी संस्थान चल सकता है, कोई भी संस्थान चल सकता है, लेकिन सवनन कोई भी नहीं चलता। वही तो दिक्कत है। पंचम काल में सब सवननों से मोक्ष हो जाने का अगर नियम होता तो आज भी हम किसी भी सवनन से मोक्ष जा सकते थे, लेकिन सवनन पहला चाहिए पड़ता है और संस्थान सभी चलते हैं मोक्ष जाने के लिए। आज पंचम काल में सहोनन तो हीन सवनन है, 5वा नंबर का, 4था नंबर का, 4था, 5वा और 6ठा, ये 3 सवनन पंचम काल में मिलते हैं। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का सवनन नहीं मिलता। शुभ प्रकृति कहलाती है, शुभ कर्म कहलाता है और शेष सभी 5 जो सवनन हैं वे अशुभ कर्म हैं, पाप कर्म हैं। पाप कर्म के उदय से जीव मोक्ष कैसे जाएगा? पुण्य कर्म के उदय से तो जाएगा ना। पहला सवनन मिल जाए तो उस पहले सवनन से यदि उस सवनन का सदुपयोग हो जाता है तो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। स्वर्ग मिलना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन मोक्ष प्राप्त होना ये दुर्लभ बात है। संसारी प्राणी जब तक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना नहीं करता, रत्नत्रय को स्वीकार नहीं करता, तब तक निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को प्रथम सहनन प्राप्त करना ही पड़ेगा, चाहे इस भव में करे चाहे किसी भव में करे। प्रथम सहनन के साथ ही निर्वाण प्राप्ति का अटूट संबंध है। लेकिन संस्थान कोई भी हो सकता है, छह में से छह संस्थान होते, कोई भी हो सकता है, मोक्ष जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे छह संस्थानों में से कोई भी संस्थान हो, मोक्ष मिल रहा है, तो देखिए मोक्ष मिलने वाले जीव को तो अरहंत बनना ही पड़ता है, और अरहंत बनने के पश्चात शरीर से संबंधित जो भी गुण हैं, 1008 शुभ लक्षण 1008 शुभ लक्षण होते हैं, ये 1008 हो ये नियम नहीं है, क्योंकि कुब्जक सनन है और हुंडक संस्थान, कुब्जक संस्थान है, हुंडक संस्थान है, इन संस्थानों में किसी से भी मोक्ष जा रहा है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन आत्मा टेढ़ा मेढ़ा न हो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कन्नड़ में एक कहावत है, कब्बु डोंकादरे सिही डोंके, कब्बु यानी क्या, गन्ना, देखो गन्ना उगता है तो सीधा भी उग सकता है और टेढ़ा भी उग सकता है, गन्ना मान लो टेढ़ा बन गया है उग करके, गन्ने का पेड़ ऐसा टेढ़ा है, तो कहते हैं उसमें जो रस है और रस में जो मिठास है, गन्ना अगर टेढ़ा हो तो मिठास भी टेढ़ा होता है क्या, नहीं है, मिठास टेढ़ा नहीं होता, गन्ना ही टेढ़ा होता है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा को सरल ही रहना पड़ेगा, मन वचन काय की प्रवृत्ति को सरल बनाना पड़ेगा, आत्म स्वभाव को समझकर, आत्म स्वभाव को जानकर बहिर्मुखी आत्मा को अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा, और अंतर्मुखी बनने के पश्चात ही आत्मा को सरलपना आता है और इस सरलता से निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो आत्मा सरल होती है उसके पास कषाय परिणति नहीं होती, कभी क्रोध नहीं होता, कभी मान नहीं होता, कभी मायाचारी के भाव प्रकट नहीं होते, लोभ परिणाम नहीं होते। चार प्रकार के इन कषायों को सरल आत्मा, अंतर्मुखी आत्मा, इन्हीं को जीत करके वह धर्मात्मा बनता है, परमात्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए अंतरंग से विशुद्ध होता है, और ऐसे विशुद्ध आत्मा को शरीर टेढ़ा मिल जाए तो मिल गया, शरीर टेढ़ा मिल गया, लेकिन मोक्ष जा सकेगा कि नहीं, जा सकता है, परंतु 8 कर्मों को नाश करने के लिए जो योग्यता आती है आत्मा के पास, वह प्रथम सहनन के द्वारा ही आती है, उसके नीचे वाला कोई भी सहनन मिला हो तो 8ों कर्मों को नष्ट करके निर्वाण की प्राप्ति वह नहीं कर पाता। ये एक व्यवहार बात है, प्रश्न बहुत अच्छा है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो तो दीक्षा कैसी मिलेगी। ये व्याख्यान पंचम काल में ही हुआ है, बाकी चतुर्थ काल में टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाला अगर प्रथम सहनन वाला है तो टेढ़े मेढ़े शरीर को लेकर के किसी के बीच में तो वो आएंगे नहीं, जंगल में ही रहेंगे, मुनि दीक्षा लेंगे, 4ों कर्मों को, घाती कर्मों को नष्ट करेंगे, अरहंत बनेंगे, गांव में आने की जरूरत ही नहीं रहती उनको, और वे जंगल में ही निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। देखो चतुर्थ काल में कोई भी व्यक्ति कितना भी टेढ़ा मेढ़ा शरीर क्यों न हो, दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त करते थे, उनको कोई दीक्षा देने की जरूरत नहीं है, स्वयं भी दीक्षित हो जाएं और वज्रऋषभ नारायण सनन का सदुपयोग कर लें, उस शक्ति का सदुपयोग कर लें तो निर्वाण की प्राप्ति होती थी। लेकिन पंचम काल में ये विधान बनाया गया, शरीर बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो मुनि दीक्षा नहीं लेना, लक्षण शुभ होना चाहिए, अंगोपांग सुंदर होना चाहिए, ये सुंदरता पंचम काल के लिए ठीक है, आवश्यक है, लेकिन चतुर्थ काल में तो इसकी आवश्यकता गिनी नहीं जाती थी। किसी को अच्छा सहन मिला है और भगवान की वाणी को सुनने के लिए समोशरण में चला गया है और भगवान की वाणी सुन रहा है, उनको पता चला सभी संस्थानों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन वज्रवृषभ नारायण शरणन मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह जिसको मिला है वह दिगंबर दीक्षा लेकर के इसी भाव से मोक्ष जा सकता है। भगवान से परमिशन मिल गया और क्या चाहिए, भगवान से पता चल गया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो सभी अंतरंग बहिरंग परिग्रहों को त्यागने का प्रयास करेगा और अपने जीवन में रत्नत्रय को धारण कर लेगा तो उसको अंतर मुहूर्त के भीतर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था दीक्षा लेने के पश्चात। बाहुबली साल भर खड़े रहे, भरत खड़े भी नहीं रहे, बैठे रहे, आराम से बैठे रहे। केवल अंतर मुहूर्त तक आराम से बैठना है केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, हमको यही तो नहीं आता है, आराम से बैठना नहीं आता। हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। करने की परिस्थिति, हमारी अनादिकालीन परिस्थिति, ये इतनी आदत हो गई है कि महाराज सामायिक में क्या करना पड़ता है करने का ही पूछते हैं, हर जगह करने का ही पूछते हैं। सामायिक में तो कुछ भी करना नहीं पड़ता। उपाध्याय परमेष्टि से अगर हम इस बात की शिक्षा लें, हे उपाध्याय परमेष्टि, हमको ये बताओ कि सामायिक में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए सामायिक, तो वो तो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, वो कहते हैं सामायिक में तो कुछ भी करना नहीं पड़ता, इस प्रश्न को यहाँ पर क्यों ले आए हो, कुछ भी नहीं करना है आपको, फिर क्या करना है। अरे कुछ करना ही नहीं है तो क्या करना और पूछ रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना यही करना है और क्या करना है। कुछ भी नहीं करना यही करना और क्या करना है। नहीं नहीं, वो तो बैठना पड़ता है, क्या खड़े होना पड़ता है, और खड़े होने के बाद या बैठने के बाद आसन मांड करके बैठ गए, बैठने के पश्चात क्या करना पड़ता है। तो उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं चाहे बैठो चाहे खड़े रहो, क्या किसी भी अवस्था में हो, तुमको कुछ नहीं करना, यही सामायिक है। अंतरंग से कुछ सोचना नहीं, कुछ विचार नहीं करना, कुछ विकल्प को उठने ही नहीं देना। संसारी प्राणी सदा ही दो प्रकार के विकल्पों में झूलता रहता है। एक शुभ विकल्प होता है जो संसारी प्राणी के मन में उत्पन्न होते हैं, वे सारे के सारे पंचेंद्रिय विषय इंद्रिय विषयों को लेकर के उत्पन्न होते हैं, परिग्रह को लेकर के उत्पन्न होते हैं। जैसा भी हमारा मन परिग्रह की ओर दौड़ता है, परिग्रह के बारे में चिंतनशील होता है, और परिग्रह के संबंध में कुछ भी चिंतन करो वह अशुभ विकल्प है। परिग्रह को लेकर के विकल्प आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ग्रहण भाव के माध्यम से अशुभ विकल्प उत्पन्न होगा। और परिग्रह तो मन में आया लेकिन उसको त्याग करने के संबंध में विकल्प बार बार आ रहा है तो वह शुभ विकल्प है। परिग्रह के आश्रय से दो प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। परिग्रह दिख रहा है, सामने है, और उसको लेकर के त्याग के भाव जागृत हो गए, ये कौन से विकल्प सुन रहे कि नहीं, क्या थक गए। कौन से विकल्प हैं ये, शुभ विकल्प। और परिग्रह को देख करके त्याग के भाव जरा भी नहीं जग रहे हैं तो ये कौन से विकल्प। अभी आप लोगों ने एक एक मूर्ति के लिए दान के भाव जगाया, 1,00,000, ये परिग्रह है क्या, नहीं, धन परिग्रह है, आपके पास ही है, लेकिन अभी अभी भगवान की मूर्ति समो शरण में रखने के लिए जो आपके नाम से आपके पुरुषार्थ से रखा जाएगा, आप ही पूजन करने वाले हैं, समो शरण आपका, कुबेर भी आप, इंद्र भी आप, आपको ही पूजन करना है। और प्रति वर्ष ऐसा ही मिलकर के दिगंबर जैन समाज वाले ऐसे आनंद को लेकर के पूजन करते हैं तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, हैं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? ऐसे सामुदायिक रूप से जब हम पूजन करते हैं कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत विशुद्धि बढ़ती है, जितने लोग जुड़े उतना ही आनंद आता है, क्योंकि सबकी भावना मिल करके एक अतिशय प्रकट होता है, एक माहौल बनता है पंडाल में। इस अतिशय के कारण से एक दूसरे के बीच में रह करके हम अपने परिणामों को विशुद्ध ही बनाते चले जाते हैं। और ऐसा आप एकांत में बैठ करके पूजन करो, तीन चार लोगों के बीच में बैठ करके पूजन करो, उस वहाँ माहौल नहीं बन पाता। ये जो भावनाओं की ऊर्जा होती है, माहौल होता है पूजन के काल में, ये पूरा व्याप्त हो जाता है पंडाल में। और ऐसे व्याप्त इस माहौल में बैठ करके एक दूसरे के लिए इतने विशुद्धि बढ़ती है। ये क्यों बढ़ती है विशुद्धि? विशुद्धि इसलिए बढ़ती है कि कुछ ऊर्जा दूसरे से मिलती है और कुछ ऊर्जा अपनी होती है, दोनों प्लस होकर के वो ऊर्जा ही डबल बनती है। और ऊर्जा डबल बन जाए तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने में देरी नहीं लगेगी। आप अकेले में बैठ करके पूजन करो, इतना आसान नहीं है। समूह शरण में जाकर के श्रेणिक राजा ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, समूह शरण में ही गया, समूह शरण के पाद मूल में जाकर के, महावीर भगवान के पाद मूल में जाकर के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ हुआ। लोग थे क्या नहीं वहां? कितनी सभाएं थी? 12 सभाएं थी, देवों की 4 सभाएं और उन देवों की देवियों की 4 सभाएं, इस प्रकार ये 8 सभाएं और एक मनुष्यों की सभा, श्रावकों की सभा, एक श्राविकाओं की सभा और एक मुनियों की सभा और एक त्रिरंच प्राणियों की सभा। आरिकाओं की सभा अलग से नहीं होती, श्राविकाओं की सभा में ही आगे बैठती हैं आरिकाएं, अलग से सभा नहीं है। अलग से मानोगे तो 13 सभा हो जाएंगी। देखो, आरिकाओं को श्राविकाओं की सभा में ही रखा है। इससे भी पता चलता है, इससे भी पता चलता है आरिकाएं पंचम गुणस्थान वर्ती होती हैं, छठे सप्तम गुणस्थान तो है ही नहीं। मुनियों को छठा सप्तम गुणस्थान होता है, इसलिए श्रावकों के सभा से बचाकर उनको अलग कर दिया। क्योंकि कोई दिगंबर मुनि श्रावक के संपर्क में रहेगा तो बहुत जल्दी उनके संपर्क से असंयत बनेगा। मूलाचार में कुंदकुंद आचार्य ने, वटकेर आचार्य ने यह संकेत दिया है, जो मुनि सतत श्रावकों के संपर्क में रहते हैं या संपर्क में ही रहते हैं, वे बहुत समय तक संयत अवस्था में नहीं रह सकते। संयत अवस्था उनकी बहुत देर तक टिक नहीं सकती, क्योंकि जैसी संगति मिलेगी वैसी ही मति बनेगी। श्रावकों से बचकर रहने के लिए उपदेश दिया है, बचो, असंयतों से बचो, जितना बच सको अच्छा है, एकांत ढूंढो, 4-5 दिन चले जाओ कहीं एकांत में चले जाओ साधना के लिए, और फिर अनुभव में आएगा। यदि अनुभव में ये आ रहा है कि मैं 5 दिन से अकेला हो गया और यहाँ पर कोई मन नहीं लग रहा है, तो मन नहीं लग रहा है तो संयत अवस्था में कोई अवश्य कमी है, इसलिए अपने आप को अकेले में नहीं रख पा रहे हैं। जो दूसरे के संपर्क में रह रह करके आदत वाले हो जाते हैं ना, उनको मुनि दीक्षा लेने के बाद बहुत परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी, अकेले में रह ही नहीं सकेंगे, वो डरेंगे, ये क्या हो रहा है, मैं इतने दिन तक तो इतने लोगों के संपर्क में रहता था, अकेले हो रहा हूँ, तो अपने आप में एक भीति सा अंदर से लगता है कि अकेला कैसा रहूँ, कोई कोई लोग अंधेरे में रहने के लिए डरते हैं, लाइट बुझा करके वो नहीं सो सकते, कम से कम जीरो लाइट तो जलते ही रहना चाहिए। एकदम अंधेरा हो गया, सभी दरवाजे खिड़कियां बंद हो गई और एकदम अमावस्या का रात जैसी लगने लग जाए तो डर लगता है, एक प्रकार की भीति है। दिगंबर मुनि महाराज अपनी चर्या में कितने सतत तल्लीन रहते हैं, राजा श्रेणी को समोशरण के भीतर जाने के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद प्रारंभ हुआ। वहाँ पर इंद्र देवता भी थे, वे राजा श्रेणी से बढ़ चढ़ करके भक्ति करते थे। और देवों का कार्य क्या है, देव केवल पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, विमान में बैठते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, बस यही यही। जिंदगी भर हजारों लाखों करोड़ों सागरोपम वर्षों तक ये पूजन में ही जीवन व्यतीत करते हैं, इनके लिए अन्य कोई कार्य ही संभव नहीं है जो आर्यखंड का मनुष्य कर सकता है। आर्यखंड का मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है, तीन लोक में इसलिए मनुष्य गति को श्रेष्ठ माना गया है। आर्यखंड में जन्म लेना, मनुष्य गति में आना, ये बहुत बड़े दुर्लभता से प्राप्त होता है ऐसा अवसर, और ऐसा अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। चतुर्थ काल में भी जब आर्यखंड में मनुष्य जन्मते थे तो चतुर्थ काल रहते हुए भी सबको समोशरण का सानिध्य बर हमेशा हर काल में हर समय मिलता ही था, ऐसा कोई नियम नहीं है। हर समय समोशरण का सानिध्य मिलता था ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान भी चतुर्थ काल में 42,000 वर्ष कम एक कोटा कोटि सागरोपम के काल में इस अवधि के भीतर केवल 24 ही होते हैं, केवल 24 ही। और होना क्या चाहिए, एक मनुष्य की आयु चतुर्थ काल में अगर उत्कृष्ट रूप से होती है तो पूर्व कोटि आयु होती है, पूर्व कोटि आयु यानी 1 करोड़ पूर्व वर्ष के आयु वाला होता है, मैक्सिमम आयु है कर्म भूमि की। और ऐसे आयु को मनुष्य आयु को प्राप्त करके जन्म लेता है तो उनके जीवन में एक तीर्थंकर मरण काल तक सामने रहना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, सबकी